हरि जी के चरणों में जाना चाहिए, या कि मैं राज ठाकर को आज से अक्षरातीत धामधरी अपना मान करके और नौतंत्री को छोड़ देने चाहिए। कॉमन सेंस की बात थी। सर सुंदर शास ने कहा कि हम बिल्कुल जयकारा बोल करके आज से जो है धामधनी श्री प्राणनाथ महाराज ठाकुर को मानेंगे और आज से इनको कोई नाम लेकर के नहीं पुकारेगा। हमारे धाम के धनी, हमारे प्राणनाथ, हमारे अक्षरातीत, हमारे राज्य महाराज यही हैं। पर सब कहने लगे भाई जा करके स्वामी जी से बात कौन करे। भीमबा ने कहा ये मैं करूँ, इस बात की चिंता ना करो, चिट्ठी मैं लेकर के आया हूं ना, इस बात का उत्तर मैं स्वामी जी से मांगूंगा। स्वामी जी मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकेंगे, मुझे गौरव, मैं सत्य पर खड़ा हूँ, राज्य भी सत्य पर खड़े हुए आदमी को जो है पीछे नहीं हटा सकते, वो चिंता तुम मत करो, वो मैं करता हूँ, मेरे साथ चलो सारे। सब साथ सुंदर साथ मिलके भीम भाई के साथ आए। भीम भाई जी आकर के कहते हैं स्वामी जी बस आज के बाद हमारा नौतनपुरी में गादी पर बैठे हुए बिहारी जी महाराज के साथ कोई भी वास्ता नहीं, आप ही हमारे धाम के धनी हैं, आप ही हमारे श्री प्राणनाथ हैं, आप ही हमारे अक्षातीत हैं, आज हम आपको एक इंसान नहीं समझेंगे, आपकी वाणी कलश को हमने समझ लिया है, आपके तन में साक्षात राजी महाराज बैठे हुए हैं। और जयकारा बोलकर सब सुंदर साहब ने चरणों में शीश झुकाया कि स्वामी जी यही नहीं कि बस इतना कह दिया काम करने के लिए कि बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय और उसके बाद घर जाके बैठ जाएंगे, हमने आज से घर बार छोड़े। जयकारा लगाने का यह मतलब है। भीम भाई कहता है कि हमने खाली मुंह से नहीं माना, जागनी का काम आपने सिर पर लिया है, हमने आज से घर बार छोड़ दिया उम्र भर के लिए, जहां जहां आप चलने हो जागनी के लिए निकलो हम तुम्हारे साथ चलेंगे, और आज से बिल्कुल आप हमारे धाम के धनी हैं। स्वामी कहते क्या कह रहे हो, कहने के नहीं अगर हम गलत कह रहे हमें न तो स्वामी जी बार बार कहते नहीं, धाम धनी बिहारी जी महाराज कहते बिल्कुल गलत कह के आपने हमें बहुत बहकाया, बहुत हमको धक्के दिलाए, और ये सुंदर साथ गया रामचंद्र भाई, वो अगर धामधनी थे ये व्यवहार करते, धाराभाई के साथ ये व्यवहार हुआ, और कितने सुंदर साथ को उन्होंने वो किया, हमारे प्रश्न का उत्तर दो, अगर सतगुरु देवचंद जी उनके तन में बैठे हैं तो क्या वो जाति पाति नीच ऊंच का ख्याल रखते थे, क्या वो सुंदर साथ को इस तरह से फटकारते थे, जो सुंदर साथ आता था कितने गले लगाते थे, जब तक उनको खाना नहीं खिला लेते थे खाते नहीं थे, संसारिक व्यवहार आत्मिक व्यवहार परम धाम की लीला कर करके दिखाते थे, वो लीला उस तुम से हो रही है या कि तुम्हारे तुम से हो रही है, तुम हमारे प्रश्न का उत्तर दो, तुमने क्यों फूल भाई को छोड़ा, किसके लिए छोड़ा, हम सुंदर साथ अगर तुम्हारे कुछ नहीं लगते तो वास्ते हम सुंदर साथ के तुमने फूल भाई छोड़ी, वास्ते हमारे तुमने मिनिस्ट्री छोड़ी, वास्ते हमारे तुम जेलों में गए, वास्ते हमारे फांसी के तख्ते झेले, वास्ते हमारे जाकर के द्वीप बंदर अरब बंदर में सुंदर साथ के वास्ते तुमने संकट सहे, अपनी पत्नी को जो है वहां पर जेल में उनको जाकर के नजर बंद रहना पड़ा, आप कैसे हमें बुद्ध बना सकते हो, हमारे एक प्रश्न का भी उत्तर दो। स्वामी जी अब क्या उत्तर दें, सबका कौन उत्तर दे सकता है, अब जी जब काम ले रहे हैं उनके तन से उत्तर क्या देना था। तब उन्होंने कहा अच्छा मेरे धामधनी, स्वामी जी कहते चुप क्यों हो, भाई भाई कहते चुप क्यों हो, आप खड़े हो जाओ, आप आज से भीम भाई को चिट्ठी लिख दो बिहारी जी महाराज को, भीम भाई कह रहा है, और हम सब सुंदर साथ जो जयकारा जिन्होंने लगाया है आज से घर बार छोड़ दिया, हम तुम्हारे साथ जो है निकलेंगे काम करने के वास्ते, और तुम बिहारी जी को लिख दो कि ठीक है तुम अपनी गद्दी चलाओ और हम सतगुरु महाराज जी का अपमान पूरा करेंगे। अब स्वामी जी अपनी कलम से अंतिम चिट्ठी लिखते हैं, तब पाती का जवाब क्या लिख करके भेजा के ऐ बिहारी जी महाराज जो कुछ आपने चिट्ठी लिखी है अच्छा तो नहीं किया, पर खैर मुझे कोई बात की चिंता नहीं, जो व्यवहार तुमने मेरे साथ किया है ये ठीक तो नहीं किया, पर मैं इसे डरता नहीं हूँ और ना मेरे दिल में कोई घबराहट है, जो कुछ तुमने किया है उसको मैंने अपने सिर पर चढ़ाया है, आज से किसी भी सुंदर साथ को मैं नौतनपुरी तेरे पास प्रणाम करने के लिए नहीं भेजूंगा, और आज से कमर कस रही है, कमर तो पहले ही कस रही थी, लेकिन मैं उस समय सुंदर साथ को जगा जगा के तुम्हारे सहारे बेचा था कि धामधनी वो है, आज वो बोझ जो सतगुरु महाराज से धनी देवचंद जी ने मुझे दिया था कि जागनी तेरे हाथ है और शाकुंडल शाह कुमार को जगाना है, मैं धर्म के लिए कमर कस के खड़ा हो गया हूँ। नंबर दो, तुमने लिखा है कि मैं पार्टी बनाना चाहता हूँ और सुंदर साथ से पैसा बटोरना चाहता हूँ, अगर वास्ते स्वार्थ के, स्वामी जी लिखते हैं, वास्ते स्वार्थ के या वास्ते धन के या वास्ते मान मर्यादा के मैं किसी जगह भी कदम रखूंगा तो मेरा कोई भी काम राज्य महाराज किसी का भी चेहरा नहीं करेंगे। और अगर सतगुरु महाराज जी के फरमान के वास्ते मैं जगह जिस जगह भी कदम बढ़ा दूंगा आगे, मेरे बढ़ते हुए कदम को रोकने की किसी की ताकत नहीं होगी, तो हमारा सीधा होगा। कब सीधा होगा? अगर हम राज्य महाराज का हुक्म जो सतगुरु देव चंद जी का है उसको लेकर के सिर पे मैं चढ़ा के चलूंगा तो दुनिया देखेगी कौन सच्चाई पर चल रहा है और कौन झूठ पर है। झूठ तुम लगाओ मेरे ऊपर जितने भी तोमते लगाने, तुमने मुझे कहा है कि पैसे लेने के लिए खड़ा होता है, अपने मान के लिए जगह जगह जाता है, अगर ये चीजें मेरे दिल के अंदर होगी तो सबके सामने आ जाएंगी और सब तक के वास्ते चलूंगा तो मेरा कभी भी बढ़ता हुआ कदम आगे बढ़ेगा, वो पीछे नहीं आएगा। इस तरह की चिट्ठी लिख करके, ये कलाम लिख करके स्वामी जी ने अपनी कलम से ये चिट्ठी आखिरी, बस इसके बाद कोई पत्र व्यवहार नहीं होगा, नौतनपुरी भेज दिया। मैंने तो कमर कस ली आज से, अब नहीं किसी सुंदर साथ को तुम्हारे पास नहीं भेजूंगा, जो आएगा मुझे मुंह से ही कहना पड़ेगा कि तुम प्राणनाथ जी के चरणों में बैठे हो तो कह दूंगा, तेरे पास किसी के दर्शन करने के लिए भी नहीं भेजूंगा, अब परम धाम के काम के लिए जो सतगुरु देवचंद जी का हुक्म है बस मैंने सिर ठोक दिया, आज से मैं खड़ा हो गया, मेरा एक एक सांस जो है फकत राज्य के वास्ते है। अब जब ये चीज हो गई तो राजी ने भी देखा भी कोई मददगार भी तो अब चाहिए कि नहीं चाहिए। लाल दास जी की आत्म और स्वामी जी की आत्म इंद्रावती और आसबाई, ध्यान के साथ परम धाम का भी आपको संबंध बता दूं, ये दोनों हमेशा श्री राजी महाराज के चरणों में सेवा में चार सखियां जो सवेरे श्रृंगार कराती हैं हाजिर रहती है। अब राजी महाराज ने देखा कि लक्ष्मण दास की सख्त सेठ लाल दास जी की सख्त जरूरत है, क्योंकि वो ऐसा विश्वास वाला व्यक्ति है, मर मिटने वाला है पर पैसा अधिक होने की वजह से सेठाई में फंसा हुआ है। हुक्म दिया रात तो रात, जबराइल कंगाल कर दे जा करके जरा लाल दास को ताकि वो जल्दी आ जाए, क्योंकि हम लोग कहते हैं भाई साल राज्य में अरे खुदा देता है तो यार छप्पड़ फाड़ के देता है, आधी जो भाई जो दुनिया सीख चुकी है कि खुदा देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, ये कोई नहीं सीखता कि जब लेता है तो घुटने तोड़ के लेता, ये कोई नहीं सीखता। लालदास जी के पास स्वामी जी गए, चार साल रहे लेकिन धनवाद नहीं छोड़ा, घर नहीं छोड़ा, करोड़ोंपति सेठ बना नहीं छोड़ा। अब उधर क्या होता है, एक रात में कंगाल कैसे होता है कि सात जहाज भर के अरब से माल के आ रहे थे, समुद्र में जो आई बार सातों जहाज डूब गए, उधर क्या हो गया उसी रात को ही, देर क्या लगानी है, पहरेदार जो पहरा दे रहा था अंदर खुदामों के वो कहीं बीड़ा सिगरेट या जो कुछ भी धुआं धाम को हुक्का पी रहा था, उसकी इंगारे की जो चिंगारी उठी सारे गोदामों में आग लग गई, जल के राख हो गए, उधर जो सात जहाज डूब गए, उधर जितने गोदाम माल के भरे हुए थे ये जल के राख हो गए। ऐसे में क्या होता है, दिवाला जब निकलता है देने वाले शक्ल नहीं दिखाते और लेने वाले दरवाजे पे हुंडियां लेकर के आ गए। अब लाल दास की इज्जत बचाने के लिए अपने मकान बेचने लगे, सारे मकान बिक गए, सारी हवेलियां बिक गई, जेवर घर के सारे बिक गए, बर्तन घर के सारे बिक गए, यहाँ तक के एक लोटा भी पानी पीने के लिए नहीं बचा। अभी खुद बीतक में कहते हैं कि लाल दास भी साथ चला पर लेकर खाली के सुंदर साहब जी मेरे पास एक लोटा नहीं बचा, कहाँ अरबोंपति सेठ था। एक ही रात में जो है जब ऐसी हालत हो गई तो एक लड़की सिर्फ उनकी संतान थी, लड़का लुड़का कोई नहीं था, लड़की का नाम श्यामबाई था और पत्नी का नाम लालबाई था, तीनों जने बस। अब जिस समय ऐसी हालत हो जाए तो आदमी कहाँ जाता है, फिर आश्रम मंदिर द्वार चलो राज्य के चरणों में चले, प्राण क्या कर लिया। अब ये बात लाल दास जी को ठट्ठे नगर में नहीं पता कि स्वामी जी और बिहारी जी आपस में विदा हो, इसलिए लाल दास जी ने क्या प्रण किया कि जब तक नौतनपुरी जाकर धामधनी बिहारी जी के दर्शन नहीं करूंगा तब तक रोटी नहीं खाऊंगा, रास्ते में फल दूध वगैरह जो कुछ मिलेगा उसी आहार पर मैं नौतनपुरी पैदल जाऊंगा। अब तीनों बेचारे चल पड़े, चलते 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 रास्ते में मैंगलोर पाटन एक जगह आती है, वहां आए तो एक सुंदर सास मिल गया। सुंदर सास से मुलाकात हुई तो उन्होंने पूछा कि महाराज लालदास जी कहाँ जा रहे हो? कह लगे जी ऐसी ऐसी बात हो गई, अब कहे कि भाई लालदास तो लक्ष्मण सेठ थे कभी, अब लाल भी लालदास भी कहे को कहते, इसे भी कुछ छोटा शब्द पुकारा आप प्रपति हैं। सतगुरु राजजी महाराज के चरणों में नौतनपुरी जा रहे हैं धामधनी के दर्शन करने के लिए। तो उसने सारी बात बता दी कि नौतनपुरी में कुछ नहीं रखा, वो तो खाली गद्दी पर बैठे हैं धामधनी साक्षात श्री प्राणनाथ जी और वो सूरत में। अब बेचारे के दिल में दुविधा आ गई कि भाई प्राण लिया था नौतनपुरी का और इसने कह दिया कि ऐसी ऐसी बात होकर के जुदा हो गए हैं, राजीव राय साक्षात इनके तन में हैं, तो मुझे तो दर्शन राजीव राय के करने हैं। अच्छा, सोचने लगे कि मैंगलोर पोर्टल से दीप बंदर सूरत होकर के मैं निकल जाऊंगा, वहां चल के देखें तो सही कि हकीकत क्या है, क्योंकि नज़दीक वहां से सूरत पड़ता था। तो लालदास जी वहां से चल के मैंगलोर पट्टन से सीधपुर आए, सीधपुर से वहां से दीप बंदर आए, दीप बंदर से आए सीधा सूरत, आकर के चरणों में प्रणाम किया। हाँ, मंगलौर से पाटन से दी बंदर आ गए ना जयराम भाई के पास, वहां से चल के फिर सूरत आते हैं। अब बस यही चीज राजीव राय का हुक्म इतने में कार्य करता है, आकर के स्वामी जी के चरणों में दो कदमों में आके शीश झुका दिया, चरणों पे रख दिया, बोलो श्री प्राणनाथ। लालदास जी महाराज बिल्कुल कंगले फकीर हो गए और आ गए राजीव महाराज के चरणों में। अब क्या होता, ध्यान से सुनिए, अभी सुनने की बात है। अब नेम अनाज का ले रखा था, इधर जो है बातचीत होती रही थोड़ी देर बाद, उसके बाद भोजन तैयार हो गया, सुंदर साथ की पंक्ति लगनी थी, तो स्वामी जी ने खुद अपने मुखारविंद से कहा, लालदास उठो भोजन करो, घंटी बज गई है, घंटी कह रहा हूँ मैं, सुंदर साथ सब जीवने के लिए जा रहा है, आप भी जाइए भोजन के लिए पंक्ति में जा करके बैठिए। तो लालदास जी ने स्पष्ट कर, नहीं जी समझ लीजिएगा मैं भोजन नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने प्रण ले रखा है, मुझे अड़ग है, अड़ग का मतलब प्रण ले रखा है, जब तक मैं बिहारी जी ध्यान दो, जब तक मैं धाम के धनी के दर्शन नौतनपुरी जाकर के नहीं कर लेता, तब तक जो है मैं भोजन कर नहीं सकता, मुझको जो है प्रण है। अब ध्यान देना, अपने मुखारविंद से जो है स्वामी जी क्या कह देते हैं कि प्राणनाथ जी के आप प्रण यही करके आए हो ना कि धाम धनी के चरणों में जाना है, तो तुम धाम धनी के चरणों में पहुंच गए, सुंदर साथ के मिलावे में पहुंच गए, मुंह से साफ कह दिया, कहां तक शर्म रखती है। जब उन्होंने ऐसा ही व्यवहार किया तो फिर जिन सुंदर साथ के दिल में भाव था उनको कैसे टुकराए, साफ कह दिए लालदास बस जब हम कह रहे हैं उठो जाओ पंगत में बैठो, तुम राजी महाराज के चरणों में पहुंच गए हो, धामधनी के और सुंदर साथ की जमात यही है, बस यहाँ काम के वास्ते राजी ने तुम्हें बुलाया है, तुम मिलावे संयम में, संयम का मिलावा कहाँ होता है, राजी के चरणों में, तो राजी के चरणों में तुम्हारा प्रण जो था पूरा हो गया, तुम आ गए हो, आगे जाने की अब कोई जरूरत नहीं है। हाँ स्वामी जी कहते हैं सुंदर साथ जी ए बातें अब क्यों भी तक में सारी दिखी है, बस इसको याद करो, विचार करो और बुद्धि के साथ संसार में चलो। अब लालदास जी कहते हैं मैं यहाँ पहुंचा भाई, अब आगे कैसा जागनी का काम, जिसको झगड़े की बुनियाद लिखा है शब्द, झगड़ा नहीं है, हाँ संसार में किस बात का झगड़ा है कि दुनिया असत्य को परमात्मा मान करके बैठी है और उनके साथ किस बात का झगड़ा, केवल वाणी के द्वारा उनको समझाना है कि ऐ दुनिया वालों, गीता पढ़ो चाहे भागवत पढ़ो चाहे वेद पढ़ो चाहे शास्त्र पढ़ो चाहे ग्रंथ साहब पढ़ो चाहे कोई पुराण पढ़ो, पढ़ के देखो सारा ग्रंथ बताते हैं कि परमात्मा सत्य है और जगत इसकी जितनी शक्तियां हैं वो उनके अंदर, ये नहीं कि शक्ति नहीं है, वो उनके पास शक्ति है, छोटी मोटी शक्ति नहीं, शंकर भगवान जी एक क्षण इतने में चाहे ना इस ब्रह्मांड का नाश कर सकते हैं, और विष्णु भगवान कितनी सृष्टि के मालिक है, छोटी मोटी बात नहीं, मत समझिए, आखिर इनके अंदर भी तो शक्ति कहां से आई है, योग माया के अक्षर का हुक्म और शक्ति बैठी हुई है, ये कोई छोटे मोटे तो नहीं, पर है माया की शक्ति से, ये हमको भाव से पार नहीं कर सकते। ये चीज का जो झगड़ा है कि दुनिया को चाहिए केवल माया और मुक्ति का नाम उनको लो, अजय का है मुक्ति विखी है मरसा है मोर विकसा है, हाले बच्चे पढ़ते पे उन्होंने चक्कर नहीं खत्म नहीं होता, वड्डी छोड़ दी मंगनी नहीं पे होती उनका ब्याह कर रहे हैं लड़के अभी कोई काम नहीं लगा, अब माया के जीव जो है वो स्वयं माया के और कुछ आगे बढ़ते नहीं। स्वामी जी ने वाणी में भी लिखा कि जिस तरह से मछली होती है खारे जल में समुद्र में रहती है और वहीं कट के पांव उसके पर कटते जाते हैं दिन ब दिन और मर जाती है, उस मछली को कोई कह दे रे मछली तू खारे जल में रह रही है भाग्यवान, उठ चल तुझे अमृत में रखेंगे, बाहर निकालो उसी वक्त तड़प करके जान दे देगी, लेकिन अमृत या दूध या शहद के घड़े में वो जिंदा नहीं रह पाएगी। इसी तरह स्वामी जी कहते हैं कि जो जीव है ना माया के, जिनको केवल 24 घंटे किसी की निंदा, किसी का झूठ, किसी पर झूठी लानते, किसी पर तोमते, किसी का धन, किसी की झूठ, बस इसी में उनको स्वाद के चस्के और रंग माया के, और हर वक्त है माया है माया, कोई बच्चों की चिंता, दुनिया भर का जो रगड़ा अपन देख रहे हैं कहाँ तक उसका वर्णन किया जाए, यही लगा हुआ है। परम धाम की ब्रह्म सृष्टि को खाली इशारा करने की जरूरत होगी कि रे ओ सखी पहचान तू कौन है, कहाँ से आए थे, किसने तुझे भेजा है, तेरा घर कहाँ है और यहाँ कोई है तेरा, इतनी शब्द कह देने से वो तड़प के खड़ी हो जाएगी कि हैं। सोचे सोचे दो मिनट के हम सब सोचे, जीते जी के ही तो सब साथी बना रखे हैं और झूठे हैं, सिर्फ सांस हमारे तक के साथी हैं, जिस दिन हमारा ये सांस रुका कौन साथी है, क्या हम अपने माँ बाप के साथी हुए, क्या कल को बच्चे हम बच्चों पर तमन्ना रखें कि हमारे बच्चे हमारे साथी होंगे, नहीं हम भूल है, वह माया इसी भूल के अंदर आवागमन के चक्कर में जो है 84 में जीवन काट रही है, और ब्रह्म सृष्टि जो है वो इशारे से समझ जाएगी कि हम क्यों भूले, हमारा घर और है, धनी वहां बैठे हैं, यहाँ तो खाली देखने के लिए आए थे और शरीर के पर्दे में हम मोह के चक्कर में आकर के फंस बैठे हैं। अब यहाँ से लालदासी कहते हैं कि जिन्होंने जय कारा लगा दिया था उन्होंने उस दिन से घर बार छोड़ करके स्वामी जी के साथ प्रचार के लिए असत्य को मिटाकर सत्य की वाणी को जाहिर करने का ये झगड़ा, और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं भाई, कोई झगड़ा सुन के सोचते भाई प्रणामी धर्म वाले तो कहते हैं झगड़ा करने चलना है, झगड़े की नहीं शांति का, सबको सत्य की पहचान करा के इस झूठ के नरकों में से निकाल के भाव सागर से पार होने का अखंड पार ब्रह्म का रास्ता जो दिखाना है, इस काम के वास्ते स्वामी जी के साथ अब सुंदर साथ की जमात जिन्होंने जय जयकार बोला था वो साथ निकल पड़े, छोड़ दिए घर उम्र भर के लिए, हम तो आज कहीं चले जाएं फौरन वहां से टेलीफोन करके हालचाल भी पूछ लेंगे, तारे भी दे देंगे, चिट्ठी पत्री भी दे देंगे, उस वक्त देश में पोस्ट विभाग भी था ही नहीं, आज से 300-400 साल पहले ना कोई चिट्ठी ना कोई पत्री, बस जाती बार घर वालों को कह लिया कि लो भाई हम आज से तुम्हारे लिए मर गए और तुम हमारे लिए मर गए, रो बस आज अब हम लौट के वापस घरों में आएंगे नहीं, और वो सुंदर साथ फिर आया भी नहीं, उनके साथ क्या क्या बीती अब जरा अभी तक में आगे सुनना, हम लोग क्या राज्य में के लिए करेंगे जो कुछ उन सुंदर साथ ने करके दिखाया। अब हजरत में नहीं, आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने तीर्थ मुकाम बता दिया लालदास जी के आने पर, साफ जाहिर कर दिया सूरत के अंदर कि भाई किसी शहर से या जगह से मुकाम से मतलब नहीं है, मतलब तो हमारा धाम के धनी से है। वो सबसे पहले किसके तन में आके बैठे थे, सतगुरु देवचंद जी के तन में आकर के बैठे थे, इसीलिए तो देवचंद जी के लोग चरणों गिरते थे, नहीं तो पहले क्यों ना कोई चरणों गिरा, उसी नौतलपुरी में 14 साल रहे, किसी ने आके प्रणाम किया था, और उसी जब राजीव महाराज उसी तन के अंदर बैठ गए तो उसी नौतनपुरी के अंदर हजारों लोगों ने आकर के चरणों में शीश झुकाया, वाणी के द्वारा जो अंदर बैठी हुई शक्ति राजीव महाराज की थी उसको पहचान करती। अब वही शक्ति फिर जब इस तन में आकर के बैठ गई तो स्वामी जी ने पहचान करा दी कि हजरत मैंने आप श्री राजीव महाराज अब बिहारी जी महाराज के तन में नहीं है, बिहारी जी गादी के पति जरूर हैं, महाराज जरूर हैं, लेकिन श्री राज जी महाराज इस तन के अंदर खुद अपने से जाहिर कर दिया कि ये तन अब मेरा नहीं है, ये राज जी महाराज का है, कलशवाणी से बता दिया कि इंद्रावती के मैं अंगे संगे, ये तन जो है अब मेरा नहीं, ये राज जी का है, राज जी अंदर बैठ के काम करा रहे हैं, जाहिर कर दिया कि जिसने अब धाम धनी के दर्शन करने हैं वो ये तन धाम धनी का साक्षात है मक्का। अब यहाँ पर एक दृष्टांत मिसाल है कि मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था मक्का में, सारे लोग जानते हैं, और उनके चाचा अबू जहल जो हैं उस समय राज कर रहे थे, लेकिन वो दूसरा रावण या कंस कह लो, इतना पापी था और उसको परमात्मा पर कोई भी विश्वास नहीं था। वहां पर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। अब जन्म जब हो गया बड़ा और 40 साल के उम्र तक कुछ भी उनको खुदा की पहचान नहीं थी, 40 साल की उम्र के अंदर उनके अंदर शक्ति जबराइल की, श्री राजीव राय की आकर के बैठी और काम लगी करने। तो अब वो चर्चा सुना करके जिस जिसको भी खुदा पर यकीन लावे, उस समय कोई भी, आज भी मुसलमान लोग जिस वक्त मक्के जाते हैं तो उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर तब उनको एक कमरे में दर्शन कराया जाता है। किस चीज का? वहां शिवलिंग है, शिव जी का बहुत बड़ा भारी पत्थर है काला रखा हुआ, और उसको जाकर के वो चूमते हैं पर आंखों पर पट्टी बांधी होती है, उसको खोल नहीं सकते। उसके बाद वो लोग जाते हैं मदीने में, ध्यान के साथ सुनिए, इधर मदीने में जाते हैं। मदीना क्या है? वहां पर मोहम्मद साहब की कब्र है, मदीना समाधि होती है वो है, और वो उनका आखिरी है। तो उस समय अब जिस जिसको मोहम्मद साहब मक्के में रहते हुए चर्चा सुनाते थे, तो अबू जहल को जब पता चलता था वो उनकी गर्दन काट देता था, कोई भी जिंदा नहीं रहने देते थे। तब जो है मोहम्मद साहब ने अल्लाह ताला से अर्जी की कि ऐ मेरे खुदा, वो बादशाह मैं फकीर, मेरा उनका क्या बन सकेगा, इस तरह से कौन जो है तुम्हारे ऊपर विश्वास लगाएगा। तब उन्होंने क्या कहा कि तू मक्का को छोड़ दे। हुक्म हुआ, जबराइल फरिश्ता आया कि मक्का को छोड़ दे, मदीने में जा, कुछ तो साथी तेरे साथ हैं इनको ले जा, और कुछ वहां जा करके प्रचार करके एक सेना फौज तैयार कर। तो मोहम्मद साहब ने जाहिरी रूप से फौज तैयार की, फिर हुक्म हुआ कि अब मक्के के ऊपर चढ़ाई कर दे, तेरी फतेह होगी और तेरा चाचा अबू जहल जो है वो मारा जाएगा। तो मोहम्मद साहब ने मदीने से चल के मक्के के ऊपर चढ़ाई की और सेना के साथ युद्ध हुआ दोनों तरफ से, तो फतेह किसकी हो गई? मोहम्मद साहब की। अबू जहल उसके अंदर मारा गया। तब मक्के और मदीने पर दोनों का राज मोहम्मद साहब का हुआ। अब इस समय मेराज ठाकुर का जन्म स्थान कौन सा था? नौतनपुरी। और राज किसका था? बिहारी जी का। स्वामी जी कहाँ पहुंच गए? सूरत में। तो चौपाई यहाँ पर लिखी है कि स्वामी जी सूरत में है सुंदर साथ जो उनके साथ सेना जाहिरी है, और राज किसका है? बिहारी जी महाराज का है। उनको फतह पाने के लिए अपना मुकाम झंडा कहाँ बनाया? सूरत। ये है कि हजरत हाजी इतकरी लेने को मक्का, मक्का मतलब जो सुंदर साथ को पहले भेजते थे कि नौतनपुरी जाओ धाम के धनी गादी पर वहां पर बैठे हैं, वो अब जाहिर से मिटा दिया कि वहां किसी ने नहीं जाना, वहां बिहारी जी की खाली गादी है और बिहारी जी के अंदर कुछ राजी महाराज नहीं है, और सूरत के अंदर ये तन जो है ये राज्य का है। बस यहां से अपनी जमात को लेकर के फतेह पा करके कूच किया, ये उर्दू के शब्द है, कूच कहते हैं रवाना, चल पड़े, प्रस्थान किया। कहां के लिए? जो परम धाम की राजधानी है दारुल बक्का, बक्का कहते हैं अखंड परम धाम को, दारुल कहते हैं राजधानी को, जो श्री राजीव राय ने परम धाम में बैठ करके सोचा था कि दुनिया में जाकर के हम अपना मुकाम मंदिर झंडा कहाँ लगाएंगे, जो पहले से सतयुग में ये प्राण शिवजी ने ये कथा अमर शिव अमर कथा के अंदर जो पार्वती को सुनाई थी, और उसके अंदर भी ये श्लोक है, हरवंश पुराण के अंदर भी श्लोक है, वैवर्त पुराण के अंदर भी ये श्लोक है, पद्मावती केन सरितय मध्य पृष्ठे विराजिता इंद्रावती नाम सहदेवी भविष्यंती कलौलजे। ये श्लोक शंकर भगवान जी ने सतयुग में सुनाया था। तो उसी वक्त पार्वती ने कहा, महाराज तो भारतवर्ष के अंदर किस जगह पर होगा वो किलकिला नदी, और कहां वो आकर के पद्मावतीपुरी शहर बसाएंगे, मुझे लेकर के चलो। बैठे उसी वक्त अपने बैल पर और नंदी बैल पर और आगे नीचे। अब उस समय तो कोई शहर था नहीं, सतयुग में ये कहा था कलौ युगे, कलयुग में इंद्रावती नाम की देवी के अंदर पार ब्रह्मक्षाती साक्षात विराजमान होके आएंगे, और वो पद्मावतीपुरी नाम का एक नया नगर बसाएंगे और इस जगह आके झंडा लगाएंगे। वो बाहर झंडा है ना जी, एक जो प्रणामी सुंदर साथ बैठे जिन्होंने अभी तक पन्ना जी के दर्शन नहीं किए वो तो भाई वहां जाके समझ पाएंगे, एक अंदर गुम्मट और बंगला जी के पास झंडा है, वो झंडा स्वामी जी के हाथ का लगाया हुआ नहीं है, वो हमारे पंजाब के महाराज श्री गोविंद दास जी के कर कमलों द्वारा सेवा की हुई है, वो झंडा उन्होंने लगाया था। और जब बायजूराज मंदिर में हम जाएं तो रास्ते में एक चबूतरा सा आता है जिस पर संगमरमर के पत्थर भी लगा हुआ है, वो झंडा जो है वो स्वामी जी के हाथ का अपना लगा है। सतयुग में वहां आकर के झाड़ियां थी, वहां आकर के शंकर भगवान जी ने जमीन पर मत्था टेका और झाड़ी की परिक्रमा की तो उमा हंस पड़ी, कहने लगे जा रहे शंकर भोले, वाकई तुम भोले भंडारी के, यहाँ कोई मंदिर है, कोई मूर्ति है, कोई भगवान का घर है, कहाँ मत्था टेक रहे हो? कहने लगे आज नहीं, इस धरती पर सारी दुनिया आकर के सिजदा बुझाएगी। जो स्वामी जी ने वन में भी लिखा कि दुनिया चूमसी देहरी की खाद, देहरी किसको कहते हैं कि इस गुम्मट बंगला की धरती की दुनिया आकर के मट्टी चूमा करेगी, आके मत्था टेकेगी, कब? जब उन्हें पहचान होगी कि ये दरगाह किसकी है, ये ठिकाना किसका है। वो शक्ति पार ब्रह्म की जो अक्षातीत परम धाम से उतरी है, साक्षात पन्ना जी में विराजमान रहती हर वक्त। अरब से चले थे मस्तान जी, उसने कुरान में ये पढ़ा कि फर्दा रोज को अल्लाह आएगा, हिंद और काबुल के बीच में आके जाहिर हो गया, तो वो वहां से चले। मुसलमान कवि था, पन्ना जी पहुंचा, वहां के सुंदर शाह से अंदर मंदिर नहीं जाने की कि मुसलमान है, इसको कैसे मंदिर जाने की। एक टांग पर खड़े होके मस्तान ने 125,000 चुपाई बोली अपनी आत्म के दर्द से। उसमें फिर उन्होंने क्या बोला, पन्ना तो परम धाम देख करके प्रणाम देख, आश को आराम दो, सकल दुख भागे हैं, कहते मस्तान जासो लागी इश्कतान, रू देखे दीदार, श्री प्राणनाथ जी साक्षात पन्ना जी में विराज। उसको दारुल बक्का कहा है कि परम धाम की राजधानी इस दुनिया में अगर कोई मुकाम ठाम है तो वो पन्ना जी है। क्या जी, तो काफी हो गया, पूरी देश का तो कोई पता नहीं, मस्तान की वो छपी हुई भी है, उसमें समय हुआ लिखा हुआ पर याद नहीं, पंचक है और मस्तान की छपी हुई है, शायद काफी किताबें हैं, हमने खुद छपवाई थी, शायद कोई एक आध कापी पड़ी होगी तो सवेरे देख के आपको दे दूंगा। उसमें वो डेट वगैरह भी लिखी है कि तब वो अरब से पैदल चले, पर हो काफी देर हुई उनको, मेरे ख्याल में डेढ़ एक साल दो साल आई। और जिस दिन आई, भाग्य से क्या हुआ कि महाराजा छत्तर साल जी के दरबार में राजा महाराजा लोग इनवाइटेड थे और वहां पर नृत्य का लड़कियां जो है वो नृत्य कर रही थी। अब केसर भाई ने सुना कि महाराजा छत्तर साल जितना कोई परब्रह्म का ज्ञान नहीं जानता, इशारा किया दूर से खड़ा हुआ कि ये नाखून से लेके सिर तक जो है माया में डूबा पड़ा, कि जिसका सिर पर सोने के मुकुट लगे हैं, गाले में हीरे के हार और लड़कियां नाच रही हैं नृत्यकाएं, तो ये माया नहीं, तो और इससे बड़ी माया क्या होती है। अब छत्तर साल जी दूर से बैठे बैठे किसी ने नहीं देखा, जवाब दिया कि ये जो तू मेरा मुकुट और ये हार श्रृंगार और राजपाट मेरा देख रही है ना, मेरे नौकर को भी नहीं चुपता। उसी वक्त आके चरणों में दंडवत प्रणाम करके गिर पड़ी। मजली रानी जी बैठे थे, महाराज छत्तर साल जी कहते ले जाओ इनको घर को, आज से लड़की स्वीकार करो, हृदय सा लड़का तो है, लड़की नहीं, लड़की बना के इनको जाके कहो महाराज छत्तर साल जी ने तुम्हें लड़की बनाया है शरीर के, और वस्त्र पहन, धारण नहीं करेगी पर इसको समझा के धारण करा दो। मजली रानी घर ले गई, उनको वस्त्र धारण करवाए, बाद में वाणी चर्चा सुना करके, बहुत शास्त्रों को पढ़ी हुई पढ़ी लिखी थी, तब सदगुरु साहब देख के भेजा हुक्म किया के जाओ नौतंत्र में मंदिर में ही वहाँ जाते हैं। तब यहाँ पर आकर के केसरबाई जी ने उस मंदिर को चलाया और वाणी का प्रचार किया, क्योंकि बिहारी जी के समय तो वहाँ सदगुरु साहब वाणी उन्होंने जब तक जीते रहे आनी नहीं दी नितिन नजदीक, इसलिए वो स्थान दांगजी भाई के बाद दादी वहीं पर बन गई। ये फिर केसरबाई जी जब आए तो आगे से जैसे जैसे महाराज श्री जी आते गए वहाँ, हाँ ये बात ना इसमें नहीं ना वो पाती और है जो बाईजू राज जी ने लिखी, वो पाती और है जो छपी है, वाणी में तो स्वामी जी ने सुंदर साथ 12 जो मोमिन जेल में गए थे उनको चिट्ठी लिखी थी, अभी तक नहीं आएगी। कबीर पंथ की है, हाँ हाँ है उनके, हाँ हाँ है। बस वो जो बीच में दोनों के दजाल माया काम कर रही थी, बस उसको खत्म कर दिया, जीत लिया, फतेह किया, यहाँ से अप्रस्थान किया अपनी जो है राजधानी झंडा कायम करने के वास्ते। अब स्वामी लाल लिख रहे हैं कि सुंदर साथ जी, वह उस तरह से मदीना कौन सा बन गया सूरत, और मक्का कौन सा बन गया जामनगर। आप वहां से चल करके बात सुंदर साथ से मदद करी स्वामी जी को, जब पहचान कर लिया कि ये ठीक है, राज जी ने परम धाम में कहा था कि मैं भेजूंगा अपनी रूह को जो दे धरती तो मुमारक, देसी विध विध की निशानियां पर तुम की न सको हक। राजी ने खुद कहा था कि जब तुम वहां जाके माया का तन धारण करोगे तो मैं भी तो तुम्हारे जैसे ही तन धारण करके आऊंगा। तो जिन्होंने वास्ते धर्म के सब कुछ अर्पण करके घर बार छोड़ दिया उनको कहते हैं महाजन, और जो रिफ्यूजी हम लोग जैसे पाकिस्तान से निकले हैं वास्ते माया के, उनको रिफ्यूजी शरणार्थी कहते। वो शरणार्थी नहीं थे, उन्होंने जीते जागते वास्ते खुदा के, राहे खुदा के वास्ते जो सब कुछ कुर्बान कर देता है उसको महाजन शब्द कहते हैं। स्वामी जी कहते हैं सुंदर साहब जी, अब उन मोमनों की सिफत स्वामी जी कहते हैं मैं इस जुबान से गा ही नहीं सकता, मेरे पास वो शक्ति नहीं है कि जिन मोमनों ने उस संकट के समय में मेरा साथ निभाया और जीते जी। हम तो 4 दिन के लिए कह दें छुट्टी ले लो, चलो चले कहीं, बड़ा हर एक के लिए भी मुश्किल है, हर एक को मजबूरी है संसार की, किसको नहीं। और धन धन वो सुंदर साथ जिनके लिए स्वामी जी कहते हैं।